आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते,
आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते,
आंखों में बाबा तेरी, आंखों में बाबा तेरी।
भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई। बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई,
किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते, किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते,
आंखों में बाबा तेरी, आंखों में बाबा तेरी।
ओम शांति। कहा जाता है हॉनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। बाबा अलग अलग तरीके से हमें तपस्या की परिभाषित करते हैं कि हर कर्म में ऑनेस्टी ही तपस्या है। तपस्या केवल याद को नहीं कहा जाता, बल्कि हर कर्म में एक्यूरेसी, हर कर्म में अलौकिकता, रूहानियत, पवित्रता, जो हमारे निजी संस्कार हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हों, दिखाई दें। ईमानदारी जो है, जितना हम स्वयं के प्रति सबसे पहले ईमानदार रहते हैं, दूसरों से ईमानदार रहना आसान काम है, लेकिन स्वयं के प्रति ईमानदार रहना थोड़ा मेहनत वाला काम है। क्योंकि स्वयं को पूछने वाला तो दूसरा कोई नहीं होता, जो हमारा जो आंतरिक संस्कार है, आंतरिक संसार है, जिससे हम द्वंद्व करते रहते हैं, अंदर में युद्ध चलता रहता है, कहीं ना कहीं अपने आप से ईमानदार नहीं होते, ऑनेस्ट नहीं होते। परिवार से ऑनेस्ट, बाबा से ऑनेस्ट, अपने पुरुषार्थ से ऑनेस्ट, अपनी धारणाओं से ऑनेस्ट, जितने भी तपस्या से संबंधित अव्यक्त वाणियाँ चल रही हैं, अलग अलग तरीके से हमारी तपस्या को बाबा जैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम तपस्या का वो रस अनुभव कर सकें, तपस्या का जो वास्तविक सुख है वो महसूस कर सकें, जो हमारा जीवन ही नेचुरल योगी जीवन बन जाए, नेचुरल प्रयोगी जीवन बन जाए। तो ज्ञान के अलग अलग पहलुओं से बाबा हमको बहुत हल्के रूप से, युक्तियुक्त तरीके से, अनेक प्रकार के विधियां बताते रहते हैं कि कैसे हमारा निरंतर जीवन ही योगी जीवन हो जाए। केवल बैठे बैठे योगी नहीं, हर समय जैसे हमारा नेचुरल योगी जीवन हो जाए, जो कि हम वरिष्ठ भाई बहनों के, दादियों के जीवन में प्रैक्टिकल में दिखाई देता था कि वो योग लगाने वाले योगी नहीं है। उनके सामने जाने से हमारा जैसे मन बुद्धि एकाग्र हो जाता था, वो बाबा की स्मृतियां मन में आने लगती थी। तो ऐसा ही हमारा जीवन भी नेचुरल नेचर बन जाए। एक बार एक गाँव का व्यक्ति था, दूध बेचने जाता था, तो जो सेठ था उसको उस गांव वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत फेथ था, विश्वास था, और वो एक्यूरेट दूध देता था। आपस में फिर धीरे धीरे दोस्ती भी हो गई उनकी, लंबे समय तक वो देता रहा दूध। एक दिन सेठ के मन में ख्याल आया कि आखिर मैं देखूं तो से ये दूध ठीक से लाता भी या नहीं लाता है, 1 किलो पूरा होता है नहीं होता है। तो जब उसको मापा गया तो वो 800 ग्राम ही निकला, तो सेठ को बहुत आंदर में गुस्सा आया कि मैंने कितना विश्वास किया आपके ऊपर और आप तो ये बहुत कम दूध लेके आए। तो गांव वाला व्यक्ति बेचारा भोला वाला था, तो लोग बहुत इकट्ठे हो गए। सेठ उसके प्रति लोगों को बहुत कुछ कहने लगा, इंसल्ट करने लगा। आखिर उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रोज़ाना उससे जो सामान लेकर जाता था, 1 किलो चीनी डेली लेके जाता था, तो वो 800 ग्राम ही निकलती थी, और वो तो उसी के आईडी अनुसार एक तरफ उसको रखता था, एक तरफ उसको रखता था, तो जितना उसकी चीनी होती थी उतना वो दूध लेके जाता था। तो जब इस बात का पर्दाफाश हुआ तो वो सेठ बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैं ही वास्तव में ईमानदार नहीं हूँ, वो व्यक्ति गाँव वाला तो ईमानदार है। तो ऐसे ही कम कहीं हम अपने आप से तो ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। अपने पुरुषार्थ के प्रति जो ईमानदारी वफादार होना चाहिए, कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं। फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि मेरा इनके ऊपर विश्वास नहीं है, जैसे आज बाबा ने मुरली कहा। तो विश्वास का गला तो हम खुद ही घोंट देते हैं। बाबा रोज रोज हमें हमारे अंदर विश्वास को जागृत करते हैं, इतने इतने ऊंचे सोमान के आसा पर बिठाकर हमें वो हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो जागृत कराते हैं कि वास्तव में तुम वही हो, कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। अनेक प्रकार के ऊंचे ऊंचे सोमान में स्थित करके हमारी जो सोई हुई शक्तियां हैं उनका हम रस चख सकें, उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकें, तो अनेक प्रकार की बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद ना खुद ही अपने लिए खड्डे खोदते रहते हैं और फिर दोषारोपण आस पास वालों के ऊपर। वास्तव में हमारे पुरुषार्थ में कोई बाधक नहीं होता, हम स्वयं ही बाधक हैं। आज की मुरली में एक बहुत पावरफुल महावाक्य था कि बाबा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही क्या कर दिया, दिव्य बुद्धि में श्रीमत भर दी। सारी मुरली से पावरफुल सेंटेंस है। जैसे हमारा ब्राह्मण जीवन हुआ तो बाबा ने जैसे हमारी बुद्धि स्वच्छ कर दी, क्योंकि स्वच्छ बुद्धि के अंदर ही श्रीमत ठहर सके, तो वो सारी श्रीमत भर दी और उसके सभी अनुभव ही होंगे। बीच में बाबा ने मुरली में जिक्र भी किया कि 2-4 साल तक तो ठीक चलते हैं, फिर धीरे धीरे ना आगे बढ़ते, कहीं ठहरती कला हो जाती है, रुका हुआ अपने आप को अनुभव करते हैं। तो बाबा ने जन्म लेते ही हमारी बुद्धि में श्रीमत भर दी, चाहे वो सारे दिन की दिनचर्या की, हर एक कर्म की, संबंध संपर्क में आते हैं उसकी, धारणाओं की, हर प्रकार के श्रीमत का आईना बाबा ने हम सबको पकड़ा दिया। लेकिन उस श्रीमत को अपने जीवन में लाने के लिए हम कितना जागरूक रहते हैं, कितना सतर्क रहते हैं, अपने आप से कितना सच्चाई सफाई से रहते हैं, वो हमारे पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये छोटा सा समय है जो हमें सारे कल्प के लिए जमा करना है। सारे कल्प का जमा करने का तो बाद की बात, उससे पहले अभी वर्तमान जो हमारा जीवन है, ये जीवन जैसे निर्विघ्न जीवन बन जाए, जैसे मन एक स्वतंत्र पंछी की तरह हो जाए, कर्मेंद्रियां हमें न चलाएं बल्कि हम कर्मेंद्रियों को चलाएं, मन हमें न चलाए बल्कि हम मन को चलाएं, इतना मन हमारे अधीन में आ जाए। तो आज बाबा किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चों? तपस्वी कुमार, तपस्वी कुमारियों को। तो सबसे पहले तो हमको यही देखना है कि हम तपस्वी कुमार कुमारियाँ हैं, वास्तव में हैं तो सही। बाबा तो हमारे भविष्य को भी देख लेते हैं, लेकिन उसको उसी विश्वास के साथ, उसी दृढ़ता के साथ, उसी स्नेह के साथ एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना कि हम तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारी हैं। फिर तपस्वी कुमार की क्या धारणाएं होती हैं उस पर चिंतन करना, एक एक सेंटेंस पर मन को रोकना है, ऐसे नहीं फटाफट आगे निकल जाना है, नहीं। अगर हम साइट सीन में भी जाते हैं, कहीं बाहर घूमने फिरने भी जाते हैं, इतना पैसा खर्च करके जाते हैं, तो हर एक स्थान को हम अच्छी तरह से देखते हैं उसको। अगर ऐसे पैसा खर्च के आगे तो मजा आएगा, पैसा खर्च करने के बाद क्या होगा, मन खाली खाली रहेगा, वो खुशी नहीं रहेगी, उदासी रहेगी, और घर में जाकर कोई पूछेंगे क्या क्या देख के आए, बता भी नहीं पाएंगे ठीक से, तो वे सब क्या बोलेंगे, तो गए किस लिए, तो घूमने के लिए। तो ऐसे ही बाबा का हर महावाक्य उस पर थोड़ा ठहरना है, उस पर थोड़ा चिंतन करना है, उसको अपने मन में बिठाना है, अपने अंदर में समाना है उसको। तो तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारियाँ, तपस्वी अर्थात बाबा ने बहुत सारी परिभाषाएं दी, लगभग नौ दस मुरलियां चल चुकी हैं तपस्या के ऊपर। बहुत प्रकार की तपस्या की परिभाषाएं दी। तपस्वी अर्थात एक बाप की याद में लगन में मगन। तपस्वी अर्थात कर्मेंद्र जीत स्वराज्य अधिकारी। तपस्वी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। अब ये तो केवल याद है, फिर इसके ऊपर आगे हम काम करें कि ये भी वास्तव में हमारे जीवन में है, स्वराज्य अधिकारी हैं। तपस्वी अर्थात पिछले संडे की मुरली कौन सी थी? रियलिटी की रॉयल्टी में रहने वाले, जो सत्यता की सभ्यता है उसमें हम हमेशा स्थित रहें। उसमें भी तीन प्रकार की रॉयल्टी बताई थी, कौन कौन सी पिछले संडे की मुरली में, मुरली के स्टार्टिंग में तीन प्रकार की रॉयल्टी कौन सी बताई थी? परमधाम की रॉयल्टी है, कौन सी रॉयल्टी थी परमधाम की? बाबा के साथ हम जहाँ रहते हैं तो वो कितनी रूहानियत है, रॉयल्टी है। उसके बाद जो परमधाम की अनादि आत्मिक रॉयल्टी थी, और दूसरी थोड़ा आगे आगे आ जाएंगे, और दूसरी रॉयल्टी आदि संस्कार देवताई संस्कार, तीसरी रॉयल्टी पूज्यपन के संस्कार। तो ये स्मृतियाँ आते ही हमारे वो सारे संस्कार इमर्ज हो जाने चाहिए, और वो संस्कार इमर्ज लंबे समय के प्रैक्टिस के बाद होंगे। उसके लिए चाहिए विशाल दिल। आय का स्लोगन था, क्या स्लोगन था आय का स्लोगन क्या था? अपने दिल को इतना विशाल बना दो जो पुराने संस्कार, और एक्यूरेट बताओ, और जो डैश में भी डैश इमर्ज ना हो, क्या जो स्वप्न में भी हद हद के पुराने संस्कार हद इमर्ज ना हो। तो स्मृति, तो इसके लिए बहुत विशाल दिल चाहिए, विशाल दिमाग चाहिए, और लंबे समय का चिंतन चाहिए। चिंतन का झाड़ू अपने अंदर मारते रहना है बार बार। घर में कूड़ा करकट होता है तो क्या करते हैं? कूड़ा रहने देते घर में, बार बार सफाई करते हैं ना। तो हमारे मन की भूमि पर भी बहुत जन्म जन्म का कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है, और उसके लिए अच्छा सा झाड़ू चाहिए। जम गया है वो, उसको बार बार लगाना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का जल, वो बुद्धि में बार बार डालते रहेंगे तो धीरे धीरे बुद्धि स्वच्छ होगी, विशाल होगी। उस विशाल बुद्धि में, उस स्वच्छ बुद्धि में ही फिर ज्ञान रत्न ठहरने लगेंगे, क्योंकि ज्ञान बहुत प्योर है। और ऊपर ऊपर से हम पढ़ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन ठहरता नहीं है। क्या कारण है मुरली हमारे मन बुद्धि में क्यों नहीं ठहरती है? जबकि दूसरी बातें तो ठहर जाती हैं, क्यों? तो क्या हम अपने प्रति इसको ईमानदारी कहेंगे? तो स्वयं के प्रति ईमानदार बनना है। क्यों नहीं ठहरते मन बुद्धि में? छोटी छोटे ऐसे व्यर्थ की बातें आएंगी तो हम उनके अधीन हो जाते हैं, और वो व्यर्थ की बातें तो लंबे समय के संस्कार आदत पड़ी हुई है, और उनमें रस बहुत होता है, और उस रस में बह जाते हैं, और फिर लास्ट में बाबा ने कहना टेढ़े बांके रास्ते, फिर निराश होकर लौटना पड़ता है। सारे दिन में अगर हम व्यर्थ के भाव में बह गए, सवेरे मुरली सुन ली, सारे दिन में व्यर्थ में चिंतन में चले गए, फिर जैसे शाम को सोएंगे तो कौन से विचारों के साथ, क्या परिणाम होगा हमारे हाथ में? निराशा। उन्हीं निराशा के भाव से जब हम सो जाते हैं अमृत वेले, फिर वैसे उठेंगे। इसलिए रिफ्रेश क्यों नहीं रहता हमारा लाइफ, हमारी लाइफ में वो खुशी क्यों नहीं रहती है, क्यों रिफ्रेशमेंट नहीं होती है, क्यों मंगोत्साह नहीं होता है? क्योंकि खुद ही हम अपने आप से ईमानदार नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें स्वयं से ईमानदार बनना है कि मैं एक तपस्वी कुमार हूँ, तपस्वी कुमारी हूँ। उसकी परिभाषा लिखनी है, खुद तैयार करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी घोर तो नशा चढ़े। इतने सालों से हम सभी ज्ञान सुनते आ रहे हैं, तो क्या हमारी भी तो बुद्धि चलनी नहीं चाहिए अभी तक? टीचर इतने सालों से पढ़ाता आ रहा है, पढ़ाता आ रहा है, पढ़ाता आ रहा है, और फिर भी अगर उसके उसके शब्द, उसके महावाक्य, उसकी पढ़ाई हमारी बुद्धि ना बैठे, बुद्धि में ना बैठे, तो उसको क्या कहेंगे? अपने आप ही हम सब जो अभाव के आत्मघात करते रहते हैं, अपना ही घात करते रहते हैं हम। तो स्वयं के प्रति सतर्क रहना, जागरूक रहना है, और ये बहुत देर बाद परिणाम आता था, एक दिन में होने वाली बात नहीं है। और इस यात्रा में कई तरह के ऑब्स्टेकल, कई तरह के विघ्न भी आएंगे। जैसे हम अच्छे मार्ग पर चलते हैं, संसार में भी देखते हैं जिन्होंने अच्छे मार्ग पर चला, उनके जीवन में बाधाएं भी बहुत आई, विघ्न भी बहुत आए, बहुत समस्याएं आई, लेकिन वो रुके नहीं हैं, उनसे उन्होंने सीख के आगे बढ़ गए। और उनके साथ तो कौन थे? संसार के मनुष्य थे, हमारे साथ कौन है? स्वयं सुप्रीम अथॉरिटी है, स्वयं भगवान हमारे साथ है, जिसका साथ ही भगवान क्या करेगा आंधी और तूफान। तो अगर हम उस मानसिकता के साथ अपने स्वमान में स्थित रहते हैं, अपने आप से ईमानदार रहते हैं, तो धीरे धीरे मन बुद्धि की ब्लॉकेज खुलती रहेगी, क्योंकि हमने अपने मन बुद्धि को काम दे दिया है। अगर मन बुद्धि को काम नहीं देंगे तो पहले वाले जो व्यर्थ विचार हैं, जो सारी व्यर्थ की रिकॉर्डिंग भर के रखी हुई है, वो तो प्ले होगी होगी। मन तो कुछ ना कुछ सोचेगा ही, मुख तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। जो हमने अपने पहले से भर के रखा हुआ है वो नेचुरल हमारे संस्कारों से दिखाई देता है, हमारी विभक्तता से दिखाई देता है। तो हमें अपने प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। तो तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारियों को बाबा ने देखा। तपस्या ही क्या है? हर कर्म में ऑनेस्ट रहना ही तपस्या है, और तपस्या की विशेषता है ईमानदारी। ईमानदार में अभी यहां दो प्रकार के बाबा ने बच्चे बताए, कौन कौन से? एक पहले और एक दूसरे। पहले कौन से, दूसरे कौन से? सेकंड नंबर कौन और पहले नंबर वाले? हाँ, गर्भस्थ वाले, वो आगे बताया। तो पहले नंबर वाले जो श्रीमत प्रमाण ऑटोमेटिकली चलते हैं, अर्थात उन्होंने अपने जीवन को श्रीमत अनुसार ढाल दिया एकदम। श्रीमत जैसे उनके जीवन का श्वास बन गया है। किनके जीवन का? जो पहले नंबर वाले। पहले नंबर वाले कौन है? हम सभी तो हैं कि नहीं है? हाँ, तो जिन्होंने श्रीमत को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। और श्रीमत भी सवेरे से लेकर रात्रि कितने प्रकार के श्रीमत है? आत्मिक दृष्टि की श्रीमत, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने की श्रीमत, आत्मिक वृत्ति की श्रीमत। तो छोटी छोटी श्रीमत है जो अभ्यास, जो ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, चारों बातों में सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रीमत जो प्रैक्टिकल में हमको अप्लाई करनी है, तो उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करने का पड़ेगा। तो श्रीमत प्रमाण अगर हम स्वतः चलते हैं तो हमको मेहनत नहीं लगती है। एग्जाम्पल दिया बाबा ने, कौन सा? साइंस का एग्जाम्पल दिया। जैसे साइंस वाले हैं तो वो कोई भी मशीनरी होती है तो स्वतः चलती रहती है, चलानी नहीं पड़ती है। ऐसे बाबा कहते तुम बच्चों के पास क्या है? साइलेंस की शक्ति है। जिन बच्चों के पास साइलेंस की शक्ति है और वो जो उसका प्रयोग करते हैं, वो समर्थ बच्चे हैं। और जो समर्थ हैं उनको श्रीमत पर चलने में मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत लगती है तो दूसरे नंबर के हैं, और मेहनत लगती है तो श्रीमत में हम मन मत और पर मत मिक्स कर देते हैं। पर मत कम मिक्स करते हैं, लेकिन मन मत हम ज़्यादा मिक्स कर देते हैं, क्योंकि मन तो पास में है ना, तो दोनों मिक्स हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर कौन से रास्ते पर चले जाते हैं? टेढ़े वांके पर। फिर क्या होता है? फिर आकर थक जाते हैं, सोचना पड़ता है, फिर निराश होकर वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि रास्ता तो एक ही है, भटक भटक के आगे, हाथ तो कुछ लगा नहीं। तो हम खुद ही नया नया रास्ता तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, अगर उस सब्जेक्ट को हम पढ़ते रहें तो क्या होगा? निराशा हाथ लगेगी ना। जो हमारा सब्जेक्ट है उसी पर ध्यान दें, उसी पर थोड़ा मनन चिंतन करें, उसी पर काम करें, उसी पर चर्चा करें, उसी पर थोड़ी लेन देन करें, तो हमारे हाथ में कुछ परिणाम भी आएगा, और दुआएं भी मिलेंगी, परिवार की दुआएं भी मिलेंगी, और एक आंतरिक जो खुशी स्वयं को महसूस होनी चाहिए, उसकी तो अपनी ही खुशी होती है। एक दिन भी अगर कोई भी जिस चीज़ से हम दुखी हैं, कोई भी एक, चाहे कोई अवगुण है, कोई आदत है, कोई संस्कार है, एक दिन उस पर काम करके देखिए कि आज हमको ये, इस पर पूरी हमको धारणा करनी है, पूरा अमल करना है इसको, वो जो शाम को जो खुशी होगी उसका कोई मोल नहीं होगा, अमूल्य होगी वो। और उस खुशी से फिर हम अगला जीवन की शुरुआत होगी। हम खुद अपने जीवन से देखते हैं, कभी कभी अब प्रतिज्ञा करते हैं तो उसकी खुशी अपनी होती है, लेकिन कब फेल हो जाते हैं उसका भी पता नहीं चलता है, क्योंकि सारे संस्कार कहाँ हैं? अंदर नहीं है, इन कर्मेंद्र में समागे है, इन उंगलियों को भी आंखें लगी हुई हैं, या अंधेरे में वही जाती हैं। तो ऐसे संस्कार हमारी कर्मेंद्र में समागे हुए हैं, इसलिए फिर हम टेढ़ा वहां का रास्ता चुनते हैं। जो रास्ता सहज है उसको हम खुद मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं है, लेकिन भगवान के आसान रास्ते को भी हम मुश्किल बनाने वाले हुए हैं। तो स्वयं के प्रति ईमानदार रहना है, स्वयं के प्रति वफादार रहना है। जो बाबा ने फरमान किए अनेक प्रकार की श्रीमत, स्वयं की देखना, क्योंकि सबकी श्रीमत अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कर्म क्षेत्र सबका अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सभी की श्रीमत एक जैसी हो। हाँ, समय समय पर सबको तो वो श्रीमत काम में आएगी जो बाबा ने दी है, लेकिन अलग अलग दिनचर्या के अनुसार, जैसे उस दिन शीरू बहन जी बता रहे थे ना क्लास में, कि बाबा ने ब्रिजमोहन भाई जी को बोला कि आप चाय पी लेना, रमेश भाई जी को बोला आप चाय नहीं पीना। अब श्रीमत तो बाबा ने क्या, वो सबके सबको एक जैसी भी है कि चाय तुमको नहीं पीनी है बाहर की, लेकिन उनको बोल दिया। तो जो भी सरकमस्टांस है, जो भी परिस्थितियां हैं, अलग अलग हो सकती है। तो श्रीमत देखना है कि हमारे जीवन में आज के दिन में कौन सी ऐसी श्रीमत है जिसका मैं उल्लंघन करता हूँ और जिसको मैं फॉलो भी कर सकता हूँ। हमारे में वो ताकत है, वो शक्ति है, चल सकते हैं उसमें, लेकिन जानबूझकर तो कोई करता नहीं है। लेकिन आत्मा जब कमज़ोर हो जाती है या वो एक पुराना संस्कार अपने आप काम करता रहता है तो बार बार हम फेल होते रहते हैं। इसलिए तपस्या केवल बैठने को तपस्या बाबा ने कहा, हर कर्म में ऑनेस्ट रहना ही तपस्या है। तो फिर बाबा ने क्या कहा कि तुम बच्चों को मैंने क्या दिया है, ऑनेस्ट की दूसरी निशानी क्या बताई, फिर ऑनेस्ट कैसे रहेंगे जब याद ही नहीं है। तो हर खजाने को सफल करेंगे, कितने सारे खजाने दिए, वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे बड़ा खजाना तो कौन सा है, ये हमारा जीवन ही एक खजाना है, तन को भी खजाना बोला बाबा ने। तो कौन कौन से बाबा ने खजाने दिए हैं, ज्ञान, इसमें तो चार ही बताए, ज्ञान, समय और गुण शक्तियां, बाकी खजाने तो बहुत हैं। ये जीवन भी एक खजाना है, फिर तन मन धन ये सब खजाने हैं, समय का खजाना, अनुभव का खजाना, दुआओं का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का, संतुष्टता का, पवित्रता का खजाना। खजानों से तो भरमार लगी पड़ी है, उनकी तो बरसात हो रही है। तो कितने सारे खजानों के हम मालिक हैं, तो कहीं हम उनको वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। और उसमें बाबा ने कहा सूक्ष्म रूप से वेस्ट करने के दो कारण बताए। वेस्ट क्यों करते हैं, जब क्या होता है व्यर्थ में और अलविलापन, दो प्रकार का अलविलापन होता है, कौन सा, एक तो शरीर का अलविलापन, दूसरा बुद्धि का अलविलापन। बुद्धि में विचार आएंगे पहले, ठीक है आज नहीं तो कल कर लेंगे पुरुषार्थ, क्या पता अभी तो बड़ी लंबी उम्र पड़ी है, हो सकता है करना ही ना पड़े पुरुषार्थ, ऐसे ही पास हो जाएंगे, ये भी सोच लेते हैं कभी कभी। तो कहीं ना कहीं अलविलापन ही हमको बांध के रख देता है, चाहे बुद्धि का अलविलापन है, चाहे वो शरीर का अलविलापन है। और ये तन को बाबा ने कितना महत्व दिया कि तन भी क्या है, ये अमानत मिली हुई है, कहीं हम अमानत में ख्यानत तो नहीं करते हैं। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया, भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं, मेरे मेरे का फेरा इसी में है, इसलिए मेरे मेरे के फेरे से मुक्त होने के, सब जानने के बाद भी अगर फिर भी हम जागरूक नहीं रहते हैं तो भक्ति मार्ग से गए गुजरे हो गए। भक्ति में तो फिर भी कुछ कहते थे, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में वो जीवन वो महसूस था तो अभी करनी है। तो कितने सारे बाबा ने खजाने दिए हैं, बाबा ने कहा ज्ञान को स्वयं प्रति लगाओ या सेवा प्रति लगाओ। अब ज्ञान हमारे पास बहुत है, उसको हम सेवा में नहीं लगा रहे हैं। एक है ज्ञान सुनाना भी बड़ी बात नहीं है, स्वयं के जीवन में लाना या स्वयं को सुनाना, स्वयं की कर्मेंद्रियों का रोज दरबार लगा के उनको पढ़ाना। इतने सारे हमारे पास एक कर्मचारी बैठे हैं, इनको हम ज्ञान सुनाते रहे, जो भगवान द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है, दिव्य नेत्र मिला हुआ है, दिव्य चक्षु मिली है, दिव्य बुद्धि मिली है, अगर इन्हीं को हम अपने आप का शुद्धिकरण करने के लिए पुरुषार्थ करते रहें तो अर्थात हम स्वयं को ज्ञान से परिपूर्ण कर रहे हैं, तो हमारे संस्कार ज्ञान के संस्कार बनते जाएंगे, वो नेचुरल नेचर बनती जाएगी, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जितने भी खजाने हैं उनकी लिस्ट तैयार करनी है, कौन कौन से खजाने हैं, नहीं तो वो खजाने सुने, मुरली सुने, बाहर आए, फिर बाहर आके खजाने सारे गायब, अंदर तो भर के आए थे लेकिन बाहर आके हाथ खाली। और वास्तव में मुरली की धारणा तो मुरली सुनने के बाद ही शुरू होती है। मुरली सुनते हुए तो अच्छा लगता है हम सबको, क्योंकि सब एकदम ऊंचे विचारों के साथ बैठे हुए हैं, बड़ी ऊंची भावनाओं के साथ मुरली सुन रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर आते हैं असली पुरुषार्थ तो तब शुरू होता है। जैसे भट्ठी करने आते हैं तो यहाँ तो अच्छा लगेगा, लेकिन असली भट्ठी तो घर में होती है, जब थोड़ा सा कोई ऊंची आवाज़ से बोल दे वहीं से तो ज्वाला प्रकट होती है, वहीं तो भट्ठी चालू होती है। तो वास्तव में हमारा जीवन ही भट्ठी है, कदम पर बाबा ने कहा एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करने वाले, समय का खजाना, एक सेकंड वेस्ट किया अर्थात कई वर्ष चले गए। वो तो उस समय बोला था एक साल भी तो बढ़ गया होगा ना, इतना टाइम हो गया बीच में। और एग्जाम्पल कौन सा दिया, भगत के आठ आने, किस कितने बराबर हैं, 800 रुपए के, लेकिन अभी 800,000 के बराबर होंगे उस समय के। तो कितना वो महत्व है इस चीज का, हर एक खजाने का कितना महत्व है, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना। और शक्तियां हमारे पास हैं उसका क्या परिणाम है, अगर हमारे पास शक्तियां उसका परिणाम क्या है, हमारी पूरी कंट्रोलिंग पावर, हमारी कर्मेंद्रियों पर हमारी पूरा नियंत्रण रहेगा। ये आंखें चलाएं माननी होंगी, मन से ऐसे मुख से ऐसे बोल निकलेंगे, ऐसे वैसे बोलने निकलेंगे जो किसी के दिल को आघात करें, किसी के दिल को दुख दें। बताया ना, रोज झाड़ू मारना है, ये सारी कर्मेंद्रियों को स्वच्छता अभियान स्वयं को चलाना है, नहीं तो जो नहीं बोलना वो ही निकल जाता मुख से। अगर इतने लंबे समय से हम ज्ञान में चलते आ रहे हैं, मन के वो हमारे सोचने का तरीका नहीं बदला अभी तक, हमारे वो बोल नहीं बदले हैं, हमारा वो व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है, वो समर्पण भाव जिस तरीके से होना चाहिए अभी तक वो भी जागृत नहीं हुआ है, उस तरीके से हम सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से हमको बाबा कह रहे हैं, वो अभी तक भी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी हम उसको छोड़ के बाहर की चकाचौंध में आकर्षित हो रहे हैं या बाहरी दुनिया के मान शान के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो अपने आप से ईमानदार कहाँ हुए। तो स्वयं के प्रति ईमानदार बनना अनिवार्य है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी खजाना वेस्ट नहीं जाए, और स्थूल खजाने भी वेस्ट नहीं जाए। स्थूल खजाने कौन से हैं, हम बाबा के घर में रहते हैं, कहीं कोई नल खुला रह गया है ना, हम देखते हैं कभी कभी नल का थोड़ा अगर टाइट नहीं बंद के दो दो बूंद भी निकलती रहती है, और जब जाकर देखते तो मन को एकदम चुप जाता है, लगता है सारे दिन की कमाई चली गई, और कहीं बाथरूम की लाइट जली रहेगी तो भी एकदम जैसे निराशा हो जाती है। क्यों नहीं मन बुद्धि समय पर काम कर रही, क्यों नहीं उसमें मन ने ऐसा काम किया उसको टाइट करके बंद किया। कई बार हम देखते हुए चले जाते हैं, ठीक है जल रही है लाइट कोई बात नहीं दूसरा बुझा देगा, तो कितनी छोटी छोटी बग्घियाँ होती रहती। और ऐसा नहीं यहाँ पर ही, घर में भी ऐसा ही है। बाबा ने क्या प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति किसकी है, अभी प्रवृत्ति वाले भी कौन है, सब वो ही है, समर्पित है। मन की स्थिति है सारी, वो तो सेवा स्थान है। तो घर में भी हमारी ऐसी वैसी कोई वेस्टेज नहीं चाहनी चाहिए, घर में भी नहीं समाज में भी ऐसी ना हो। देश किसका है, संसार किसका है, हम सब बाबा कहते तुम विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो, तो पूरे समाज के प्रति, पूरे देश के प्रति, पूरे विश्व के प्रति हमारे संकल्प चलते हैं। हम आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं। हम किसी भी एक मनुष्य का या जीव जंतु का कोई भी ऐसा वैसा कोई विचार उसके प्रति ऐसा वैसा नहीं चला सकते जिससे वो उसकी उतरती कला हो, क्योंकि फाउंडेशन है, मास्टर बीज रूप है। हमारा हर वाइब्रेशन, हर संकल्प, हर सोच सारे विश्व को जा रहा है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे सुखी तो संसार सुखी, तुम बच्चे दुखी तो संसार दुखी, तुम बच्चे खुश तो संसार खुश, तुम बच्चे रो रहे तो संसार रो रहे हो। इसलिए देवियां कभी रोती दिखाई देती है, कोई है कोई ऐसी देवी जो रोती है कोई ऐसा देवता जो कोई रोता है। तो संसार की आत्माओं की, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हम सब वो आत्माएं हैं, तो हमें स्वयं के प्रति कितना जागरूक रहना चाहिए। मंदिर में जाए कोई, मंदिर में देवी रो रही और भक्त सामने से आ जाए तो कैसा लगेगा, भक्त उसके आंसू आंसू पोंछेगा मत रो कैसा लगेगा, वो कितना खराब लगेगा। और वो तो प्रैक्टिकल में अभी है, अगर हम स्वयं ही अभी अंदर से आंसू बहा रहे हैं तो दूसरों को क्या दे सकेंगे, और इन ये आंसू रुकेंगे कैसे, जो अंदर ही अंदर, एक है मन का आंखों का रोना, दूसरा मन का रोना। खाली हाँ जी, अपने आप भरपूर रखना है, क्या करने, हाँ काली वाला क्रोध वाला रूप, हाँ वो तो अपनी अवगुणों पर काली रूप सहारनी रूप है, वो असुर सुहारनी रूप। तो अपने अंदर ही देखना है कि कौन कौन से ऐसे अवगुण हैं कि जिनसे मैं मुक्त नहीं हुआ, वो कैसे निकलेंगे, गुणों का चिंतन करना है जो बाबा ने खजाने दिए, शक्तियों का चिंतन करना है, ज्ञान का चिंतन करना है, समय का देखना है कौन सा समय चल रहा है, कितना समय बाकी रह गया, कितने लंबे समय से यज्ञ ने कितनी कितनी परिस्थितियां झेली हैं, कौन सी परिस्थितियों से ये सारे आदि जो पूर्वज निकले हैं, आदि रतन निकले हैं, वो इतना लंबा सफर कैसे किया, उस समय को सारे जो पिछला समय है सारा यज्ञ का, उस हिस्ट्री को खंगालो, देखो उसमें, हम भी तो उसी कुल के हैं ना, तो हमको तो वही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ऐसे सहज बना बनाया थोड़ा मिल जाएगा। उन परिस्थितियों से हम सब निकलेंगे तो हम उनके आसपास आएंगे, अगर हम सहज रूप से चलते रहेंगे तो बहुत दूर जाके रहेंगे कहीं ना कहीं, है ना। जो रायल कुल वाले होंगे, जो विश्व महाराजन विश्व महारानी उनके पास में आसपास रायल कुल वाले कौन सी आत्माएं होंगी जो उनके जैसा पुरुषार्थ करेंगे, उनके जैसी त्याग होगी, उनके जैसी तपस्या होगी, उनके जैसी सेवा होगी, तभी तो उनके अंग संग में आएंगे ना। हमने किया कुछ नहीं है और कुर्सी पर बैठने के लिए जा रहे हैं, कैसे होगा फिर? तो जीवन में मेहनत तो करनी पड़ती नहीं, और उस मेहनत में सुख समाया वो बहुत, क्योंकि वो हमारे निजी नेचुरल संस्कार हैं, वो तो हमारी असली सेवा के संस्कार हैं वो। तो बाबा कहते हैं कोई भी खजाना वेस्ट नहीं करना, अमानत में ख्यानत नहीं करनी है। ये तन भी एक खजाना है, मन भी खजाना है, धन भी खजाना है, वस्तु भी खजाना है। कोई भी वस्तु किससे बनती है? धन से बनती है। तो यज्ञ भी कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करें, और जो जिसमें हमको ख्याल आता है उसमें हमको दान कर देना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी क्या करते हैं? तुरंत दान महापुण्य, लंबे समय के बाद नहीं करते हैं, ख्याल आया वाना दान, फिर उसको कम नहीं करते हैं वो। लेकिन ज्ञान मार्ग में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, सोचते हैं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, और धीरे धीरे पहले सोचेंगे अच्छा अभी इतना करेंगे, फिर देखेंगे अभी तो लोग ज़्यादा है, थोड़ा कम करते क्या फर्क पड़ता है। नहीं, तुरंत दान महापुण्य, एक बार सिर ओखली में दे दिया, मन दे दिया, कुर्बानी, पूरी कुर्बानी, पूरी बलिहारी, तो बाबा भी स्वयं, भगवान भी स्वयं हमारे पर पूरा बलिहार जाएगा, है ना। धीरे धीरे नहीं मरना, धक से मरना है। आय का वरदान क्या था? मेरेपन को छोड़ दो तो क्या करो, तो था तो ठीक है, ऐसे ही बोल दे, और ऐसे ही है वो, मेरेपन को आगे तो था तो सही, कुछ तो था, कुछ तो था था बहुत अच्छा है। मेरेपन आगे, मेरेपन को डैश डैश करने वाले डैश डैश बाबा हैं, आप बीच में जो खा गए उसका क्या? मेरेपन को समाप्त करने वाले, मेरेपन को समाप्त कर डैश वाले, मेरेपन को समाप्त कर डैश वाले निर्भय और ट्रस्टी बाबा, बताओ मेरेपन को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले। तो बाबा ने कहा दुनिया में डर किसी से होता है? दुनिया वालों को मरने, और तुम बच्चे ये सब मरे हुए लोग बैठे हुए पुरानी दुनिया से, पुरानी स्मृतियों से, पुराने संस्कारों से मरे हुए हैं, तो कोई उसमें मेहनत नहीं है, वो सारी चीज़ें भूल जाने की है, पकड़ने कोई फायदा ही नहीं है। नहीं तो हम कहीं कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों का चिंतन करते ही करते ही खुद ही दुखी होते रहते हैं। अब जो चीज़ें पास्ट में हुई उसको कुछ होने वाला तो है नहीं, इसलिए बाबा ने वरदान दे दिया अमर जीवा बाबा। अगर मेरे मेरे का मेरा मेरा करते रहेंगे तो क्या होगा? म्याऊं म्याऊं माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। हाँ, तो मेरा कितना हो जाता है, बस सचमुच मैं और मेरा, जैसे दादी कहते थे, दादी जानकी जी कहते थे, मैं कौन मेरा कौन, है ना। यही दो शब्द उड़ाने वाले भी हैं, यही दो शब्द गिराने वाले हैं। लेकिन मैं जो सूक्ष्म बड़ा गहरा है ना, जैसे मान लीजिए अब ये मेरे पास अभी कोई चीज़ नहीं है, अब ये चीज़ मेरे पास आग ही दे दी, मैं जुड़ जाता उसमें, फिर उसको देने के लिए ना किसी को अगर मांग ले दिल बितकित करता है थोड़ा, दे नहीं दू नहीं दू, जब नहीं थे तो हम हल्के थे, और जब चीज़ आ गई तो उसमें फिर स्वार्थ जुड़ जाता है, उसमें अपनापन जुड़ जाता है। बाबा ने कहा ये तो देह भी अपना नहीं है, इसलिए मेरेपन का समाप्त करना है। ये देह भी भगवान ने अमानत दी हुई है, सेवार्थ दिया हुआ है, भगवान से मिलन मनाने के लिए देह मिली हुई है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह मिली हुई है, सेवा के लिए देह मिली हुई है, सबको सुख देने के लिए देह मिली हुई है। लेकिन हम इसको कहाँ कहाँ लगा रहे हैं? नज़रों से निहाल करने के लिए सबको आंखें मिली हुई हैं, सबको वरदानी बोल बोलने के लिए मुख मिला हुआ है, भगवान के महावाक्य सुनने के लिए कान मिले हुए हैं, हर कदम में पद्मों की कमाई करने के लिए क्या मिला है? पैर मिले हुए हैं, पाँव मिले हुए हैं। तो ये सारे कर्मेंद्रिय हमको किस लिए मिली हुई है? क्योंकि हमारा टोटल अलौकिक सोच होगी, अलौकिक जन्म हो गया, पहले वाली सोच टोटल चेंज। तो क्या होगा अगर ऐसी सोच रखेंगे? तो फिर हमारी प्रगति होगी। बाबा ने क्या कहा? अच्छा मैनेजर या डायरेक्टर कौन होता है जो क्या करके दिखाए? प्रॉफिट करके दिखाए। तो हम अपने जीवन में प्रॉफिट हो रहा है, हमारी प्रगति हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो हमको महसूस हो रहा है? क्या हम या सवेरे दुकान खोलते हैं और घाटा डाल के बंद करके चले जाते हैं? रोज हम सवेरे दुकान खोलते हैं और फिर बाबा हमको अनेक प्रकार की चीज़ें दे देते हैं, खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, इतने वरदानों की बरसात कर देते हैं, सेवाओं की अनेक प्रकार की हमको ऑफर कर देते हैं, वो सारी एक दुकान में हमको सारा माल भर देता बाबा। फिर सारे दिन में हम अच्छा सेल्समैन करके अगर उसको यूज़ करते हैं तो प्रॉफिट कमाते हैं, अगर उस दुकान को बंद करके रखते हैं और दूसरे की दुकान पर ही बैठे रहते जागे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा? तो होता क्या है, जो हमको मिला उसको तो हमने देखा नहीं, और वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सारी दुकान खोल के सारा माल पानी अंदर और भगवान का माल पानी बाहर। फिर बात शाम को कहेंगे, कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो बाबा ने रोज हमको सवेरे दिया है देखना है उससे मेरी प्रगति हो रही है। प्रगति कैसे होगी, अगर प्रयोगी बनेंगे तो। अगर प्रयोगी भी नहीं बने हैं, योगी भी नहीं है, तो प्रगति भी नहीं होगी, तो भी तपस्या नहीं है, तो भी ऑनेस्ट नहीं है। तो कितने छोटे छोटे बाबा हमको अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, कितने प्रकार की युक्तियां। दादियों से बाबा ने मुलाकात की, कितनी अच्छी सुंदर मुलाकात थी। क्या बताया था दादी जी को, बाप की दृष्टि और सृष्टि में आप हो, बाप की सृष्टि भी आप हो, बाप की दृष्टि भी आप हो। अब भगवान वैसे भी फैमिली भी देखते हैं, बच्चों के लिए माँ बाप क्या होते हैं, सब कुछ वही है, और बाप के लिए भी बच्चे ही सब कुछ होते हैं। तो हम भी तो वैसे फैमिली है ना, भगवान के हम सभी बच्चे हैं, तो हम वो रोज हमको देखता रहता है, उसकी नज़र हमारे ऊपर हमेशा पड़ी रहती है, हम उसकी दृष्टि में समाये हुए हैं, हमारी दृष्टि, हमारा जीवन ही उसकी सृष्टि है। कितना सुंदर महावाक्य है कि ये जीवन ही भगवान की सृष्टि हो गई है। तो वो देखता है कि इस सृष्टि में क्या क्या कर रही है आत्मा बैठ के। इसलिए अपने आप को पूरा ब्रह्मांड समझ लेना है, जैसे पूरी दुनिया मेरे में समाई हुई है। अव्यक्त महावाक्य हैं बाबा के, जो विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं उनके मस्तक के इर्द गिर्द वो हमेशा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे विश्व की सर्व आत्माएं मस्तक के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं। वो हमेशा वो इमर्ज रहेंगी, वो विश्व कल्याणकारी आत्माएं जिनका हर संकल्प विश्व के लिए है। तो वो ऐसी सृष्टि करता है जो हमको ऐसी सृष्टि का मालिक बना रहा है। कितने सुंदर महावाक्य उसने हमारी बुद्धि में भर दिया। इसलिए बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण जन्म लेते ही मैंने तुम्हारी बुद्धि में क्या भर दिया, श्रीमत भर दी। कितना उपकार है उसका, कितना प्यार है, स्नेह प्यार है। तभी तो विश्वास, विश्वास पात्र बताया ना बाबा ने, विश्वास पात्र क्यों नहीं बनते हैं, श्रीमत को अप्लाई नहीं करते हैं। फिर कहेंगे हमारे पर विश्वास ही नहीं है, विश्वास कहाँ होगा, जो उसने कहा वो तो हमने किया नहीं, तो विश्वास कैसे होगा किसी का। विश्वास तो तभी होगा ना अगर जो सामने वाला कोई कहता है, सेवा देता है, कुछ भी करता है, अगर हम उसको पूरी तन्मयता से, पूरे मनोयोग से करते हैं, तभी तो विश्वास बैठेगा। नहीं तो आपने अगर एक बार हमको सेवा दी और हमने एक बार तो की कर दिया, दूसरी बार फिर इग्नोर कर दिया, तीसरी बार बहानेबाजी मार दी, चौथी बार देंगे। तो बाबा भी तो ऐसे है ना, बाबा ने उस दिन कहा था, जैसे तुम बच्चे सेवा करने में बहानेबाजी करते हो, मैं भी तुम बच्चों को बरसात देने में डैश करूंगा। बहानेबाजी ने एक नया अक्षर था, आशीष होता ना से खत्म, चार चार अक्षर का शब्द है, आनाकानी, आनाकानी। बोला मैं भी तुमको बरसा देने में आनाकानी करूंगा। तो कहीं ना कहीं हम स्थूल सेवा के साथ अपने, क्योंकि सारा पुरुषार्थ हमारा सूक्ष्म का है, स्थूल सेवाओं पर फिर भी करना आसान है क्योंकि वो दिखाई दे रही है, लेकिन जो स्वयं के प्रति मन के अंदर इतना, वो उसको शुद्ध बनाना, इतना पवित्र बनाना, इतना उससे प्यार करें अपने मन से ही कि वो पूरा हॉनेस्ट बन जाए, मन इधर उधर जाए ना, मन में इतने अच्छे शक्तिशाली हम संकल्प भर दें कि मन उन संकल्पों में जैसे नाचता रहे, गीत संगीत बन जाए वो संकल्प उसके। बाबा के तपस्या अर्थात क्या, जीवन में नाचना गाना, खुशी मनाना, मौज मनाना। पिछले संडे की मुरली थी ना, तपस्या अर्थात क्या, नाचना गाना, मौज मनाना, मिलन मनाना भगवान से। तो जो हमारे संकल्प ही हमारे गीत संगीत का काम करें, और जब गीत संगीत बजता है तो पांव तो अपने आप ही थरकते हैं, तो वो मन भी उमंग उत्साह से उठता रहेगा, खुशी में नाचते रहेगा, क्योंकि हमने गीत संगीत के संकल्प तैयार किए स्वयं। तो ऐसे नहीं कि मुरली को हूबहू पढ़ना है, मुरली में कुछ ऐसे संकल्प, नए संकल्प अपने आप पैदा होंगे जब हम उस पर थोड़ा गौर करेंगे, चिंतन करेंगे। नए नए संकल्प वो हमारे मन को ऊर्जा से भर देंगे, शक्ति से भर देंगे, खुशी से भर देंगे, पुरुषार्थ का नया रास्ता खोल देंगे। योग लगाने के नए नए तरीके अपने आप अवतरित होने लगेंगे, वो सीन अपने आप अवतरित होने लगेंगे, मन बुद्धि पूरा एकाग्र हो जाएगा, भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो टेढ़े वांग के रास्ते में हम चले जाते हैं, वहां जाने के लिए हमको पास टाइम है और सीधे रास्ते पर चलने के लिए टाइम नहीं होता, फिर निराश होकर वापस लौटना। तो स्वयं के ऊपर थोड़ा आंख रखनी है, स्वयं के ऊपर थोड़ा नजर रखनी है। एक व्यक्ति था, रोज अपने कुत्ते को घुमाने लेके जाता था 4 किलोमीटर। अब व्यक्ति तो 4 किलोमीटर घूम के आता था, लेकिन कुत्ता 8 किलोमीटर घूम के आता था उसी रास्ते पर जाके, ऐसे कैसे हो गया? बिल्कुल ठीक वाला बात है, क्योंकि कुत्ता ज़िगज़ैग घूमता है, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। तो वो 8 किलो घूम के आ जाता था, 8 किलोमीटर, 8 किलो नहीं, 8 किलोमीटर। तो ऐसे हमारी कोई ऐसी तो नहीं है कि हमको जाना सीधे रास्ते और जिग जैग होते जाते हैं ऊपर, जैसे हम पहुंचेंगे थक जाए ऊपर जाके, जैसे कुत्ता जीभ निकाल देता है बाद में, ऐसे भी हम हाँफ तो नहीं जाते कहीं, निराश तो नहीं हो जाते हैं, फिर वापस लौटना पड़ता है। तो देखना है पुरुषार्थ सहज नेचुरल स्वतः है, जैसे बाबा ने कहा साइंस की शक्ति, ऐसे तुम बच्चों की साइंस साइलेंस की शक्ति। तो एक बाबा ने कहावत बताई थी और बीच में, कौन सी कहावत, विश्वास से संबंधित थी, नहीं अच्छा है गीत बजता ना तो बाबा की याद आनी चाहिए, हलचल में नहीं आना चाहिए। हाँ वैसे ध्यान रखना चाहिए मोबाइल पहले से साइलेंस हो, लेकिन अपने मन को थोड़ा समझा देना है। मन को अगर नहीं समझाएंगे तो किसी का ही मोबाइल बजेगा ना टेंशन में आ जाएंगे हम, और जिसका मोबाइल बजे वो बड़े सुख से सुन रहा है और बाकी सारे टेंशन में। और जब मोबाइल है तो कोई हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो कभी कभी हमने देखा बाबा का कमरे मोबाइल बजता बहुत हड़बड़ा जाते हैं, आराम से उठाओ कोई बात नहीं, अब जिसको सोचना वो तो सोच ही लेगा, आराम से भी सोचेगा हड़बड़ा के भी सोच ही लेगा, तो क्यों हम अपनी स्थिति को खराब करें। हाँ ध्यान रखना है कि मोबाइल बजना नहीं चाहिए फिर भी, नहीं तो जब 7:30 का रिकॉर्ड होता है पहले छोटा रिकॉर्ड बजेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा बजेगा, कितने रिकॉर्ड बजते रहते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम मधुबन में आते हैं तो ये साइलेंस कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो नेचुरल बजते रहते हैं, हर घंटे में बजता ही है, तो कईयों का मन कैसे चलता है कईयों का मन, क्योंकि हमारे संकल्प दूसरों को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर किसी का भी, क्योंकि पवित्र आत्माओं का अगर नेगेटिव संकल्प भी चल गया ना तो वो भी बड़ा घातक होता है किसी के प्रति। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत कीमती है, बहुत अमूल्य है, इसलिए सोच समझ कर सोचो, बोलना तो है ये लेकिन सोचने से भी पहले सोचो कि मैं क्या सोचने जा रहा हूँ, कितना सूक्ष्म ज्ञान है ये। तो ये सारी श्रीमद बाबा ने हमारी बुद्धि में भर दी। तो वो कौन सी बीच में कहावत थी, हम बोल थोड़ा के बीच में आप पूछे नहीं, काम खर्च बाला निशीन, हाँ ये खजाना। एक दूसरी कहावत और, हाँ सत्य की नाव डूबेगी लेकिन हिलेगी नहीं। हाँ ठीक बोला। सत्य की नाव डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं, डूबेगी। तो ऐसे जीवन में बाबा ने कहा अनेक प्रकार की परिस्थिति तो आएंगी, इसलिए कहा जाता है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो ऐसे जीवन में छोटी मोटी घटनाएं तो आती रहेंगी लेकिन अपने मन को हलचल में लाना है। तो कितनी सारी बातें थी मुरली में, बाबा ने किसको देखा, तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारियों को। तो अपने जीवन में देखना है अलग अलग तरीके से, जैसे मुरली से टाइटल उसी से वरदान ले लो, सारे दिन में उसका अभ्यास करो, मैं तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारी हूँ, फिर उसके आगे दूसरा टाइटल मैं ईमानदार आत्मा हूँ, तीसरा टाइटल मैं बाप की दृष्टि में समाई हुई आत्मा हूँ, चौथा टाइटल मैं बाप की सृष्टि हूँ। अलग अलग टाइटल उससे निकालने हैं, उसमें से सोमान निकालो, एग्जाम्पल निकालो, कहावतें निकालो। कितने एग्जाम्पल दी थे आज, 4 एग्जाम्पल थे, कौन कौन से, साइंस का एग्जाम्पल, क्या कहा बाबा ने, अगर एग्जाम्पल से भी मुरली को याद करने का तरीका सीखाना तो भी हो जाता है, क्योंकि उसी एग्जाम्पल के इर्द गिर्द वो माँ बाकी घूमते रहते हैं। जैसे वो साइंस की शक्ति ऑटोमेटिकली काम करती रहती है, ऐसे तुम बच्चों के पास साइलेंस की शक्ति होने के कारण तुम समर्थ आत्मा है, तो तुम हर कदम श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट स्वतः चलते रहेंगे, सह चलते रहेंगे, मुश्किल नहीं लेगी। अगर वो नहीं है तो टेढ़ा वांग का रास्ता पकड़ लेते हैं, फिर सोचना पड़ता है, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर वापस लौटना पड़ता है, फिर परिणाम कुछ नहीं आएगा। तो ये दो प्रकार के बच्चे इसी एग्जाम्पल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और कौन सा एग्जाम्पल दिया था, भक्ति मार्ग का, भक्ति मार्ग का क्या दिया था, दो एग्जाम्पल दिया भक्ति मार्ग के, एक 8 आने का, दूसरा 1 रुपए का, 8 आने का, 8 आना भी 800 रुपया है ना। तो यहाँ भी देखना हम कितना किस भावना से समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं, उतना ही बाबा ने कहा 1 का 10 गुना बढ़ना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, है ना। और एग्जाम्पल भक्ति मार्ग का, मेरे मेरे का फेरा, भक्ति मार्ग में कहते तन मन धन सब तेरा क्या लायक है मेरा, तो प्रैक्टिकल में अब हम कितना कर पा रहे हैं उसको। और कौन सा एग्जाम्पल दिया, एक मैनेजर और डायरेक्टर का एग्जाम्पल दिया, मैनेजर डायरेक्टर अर्थात प्रॉफिट करने वाले, अच्छा मैनेजर वो है, डायरेक्टर वो है जो सदा प्रॉफिट करता है, तो सदा वो जिसकी प्रगति होती है, सदा प्रगति करने वाला अर्थात प्रयोगी आत्मा है, योगी आत्मा है। अगर प्रयोगी नहीं है, योगी नहीं है, खजानों को योग में नहीं, प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, तो ऑनेस्ट आत्मा नहीं है। तो कितने सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, और कितने सारे खजाने मिले हैं जिनको हमको वेस्ट नहीं करना है, तो उसकी हम अलग से सूची तैयार करें। तो सारा काम अपने ऊपर हमको खुद करना है, खुद के प्रति हमको ईमानदार रहना है, स्वयं के प्रति ईमानदार, स्वयं की धारणाओं के प्रति ईमानदार, छोटी छोटी धारणाएं भी, खाने पीने की धारणाएं, सोचने की धारणाएं, बोलने की धारणाएं, कहाँ क्या बोलना है, कितना समय बोलना है, कौन सा समय चल रहा है, सामने वाले के परख के बोलना है। ऐसा नहीं कभी भी कि हाँ भाई कुछ भी बोल दें हम। 10 लोग खड़े हैं, अकेले व्यक्ति को बात बतानी है और 10 लोगों के सामने हमने बता दी और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा वो। तो कौन से स्थान पर कैसी परिस्थितियां हैं, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, वो सारी हमारी दिन प्रतिदिन जब मन बुद्धि स्वच्छ होगा तो धीरे धीरे हम दूसरों को परख के उसी अनुसार व्यवहार करेंगे। नहीं तो मन बुद्धि में पहले जैसे विचार भरे हैं, सारे खिचड़ी अंदर ही पकी हुई है विचारों की, तो इन विचारों का शुद्धिकरण करना, प्योरिफिकेशन करना है, और केवल वो चिंतन से होगा, बिना चिंतन के नहीं होगा। इसलिए जो भी हमको डेली मुरली मिलती है, अलग अलग तरीके से टॉपिक छांटो, उसके प्रश्न उत्तर बनाओ, उसके एग्जाम्पल देखो, बाबा ने किस किस को कौन कौन से उसमें पात्र हैं, कितनी कहावतें हैं, कौन कौन से उदाहरण दिए हैं, अनेक प्रकार के मुरली को याद करने के तरीके हो सकते हैं। और ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो मन बुद्धि अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा, आखिर माया भी नमस्कार कर चली जाएगी, बहुत हो गया अभी मैं आपके पास नहीं ठहरने वाली, फिर वो म्याव म्याव नहीं करेगी, फिर क्या करेगी, नमस्कार करेगी। तो ऐसे अनेक प्रकार के मूल्य के महावाक्य हैं जिससे हमको सारा दिन स्नान करते रहना, ज्ञान का स्नान करते रहना, उसकी निरंतर बरसात होती रहनी चाहिए। कोई ना कोई पॉइंट किसी को भी देखते हैं, उनको देखते हुए संकल्प हमारे ऐसे ऊंच कोटि के होने चाहिए, वो छोटे संकल्प नहीं। किसी के साथ भी जो भी हम व्यवहार में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो किसी के साथ कोई सम्मान जोड़ दो। रास्ते में जा रहे हैं तो धरती में हमारे वाइब्रेशन जा रहे हैं, पवित्रता के वाइब्रेशन, प्योरिटी का सागर मेरे स्तर पर है और मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ, शरीर सहित मैं आत्मा पूरी पवित्रता का सागर हूँ, और वो वाइब्रेशन पूरी धरती में समाते जा रहे हैं, चलते फिरते योग हो जाएगा, ये योग का प्रयोग हो गया है। तो जो भी खजाने दिए हैं बाबा ने, अगर हम उसको निरंतर प्रयोग में लाते रहेंगे तो हमारा जीवन निरंतर योगी बनता जाएगा और हमारी उड़ती कला होगी, ठहरती कला नहीं होगी, फिर दूसरों को भी उड़ा सकेंगे। ओम शांति।
आँखों ही आँखों में तुम जादू चला रहे हो, आँखों ही आँखों में तुम जादू चला रहे हो, प्रभु से मिला रहे हो, दुनिया बना रहे हो।
हम कुछ नहीं है करते, करके भी यही है कहते, हम कुछ नहीं है करते, करके भी यही है कहते, देखा है हमने से जग को निहाल करते,
आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी।
तेरी छलका है प्यार का समंदर, आँखों से तेरी छलका है प्यार का समंदर, झाका तनिक भी जिसने वो कदर का वो सिकंदर,
दर तो अलम जहाँ के सारे इन्हीं से हरते, दर तो अलम जहाँ के सारे इन्हीं से हरते, देखा है हमने से जग को निहाल करते,
आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे,
देखा है हमने से जग को निहाल करते,
आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी।